ജേണിയസായ പാഹുര മണേണയമുജ്ജലം അനന്തം ഗാഹാമി വിവരിയം തം ഗുണഹര ഭണാരയം വന്ദേ. യഹ ശ്രീ ഭീസേനാചാര്യജിത് ജയദോല ടീക്കാ ഹൈ ജോ കഷായ പാഹുര തഥാ ചൂർണി സൂത്ര ഗ്രന്ഥോ പർ ലിഖി ഹുഈ ഹൈ जिनके कर्ता है गुंदर भट्टार तथा यतीश्वर आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है. यह जो द्वितीय पुस्तक द्वितीय अर्थाधिकार जिसका नाम है प्रकृति विभक्ति, उसमें हम उत्तर प्रकृति की बात देख रहे थे और उसमें अभी हम काल की बात देख रहे हैं. एक जीव की अपेक्षा एक कालानुगम की बात यहाँ देख रहे थे और उसमें भी आदेश यानी मार्गणाओं की बात चल रही थी. उसमें ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञानी जीवों की बात चल रही थी. तो मति ज्ञानी में अन्य प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा अनंतानुबंधी का जघन्य उत्कृष्ट काल बताया था. उसको भी हम 119 पृष्ठ से पढ़ते हैं विशेषार्थ में. मति ज्ञानी आदि जीवों के सभी प्रकृतियों का, आदि में मति श्रुता उदी मन परे लिया था ना उन्होंने, मन परे को नहीं लिया था, मति श्रुता उदी को लेना है. मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और औदी ज्ञानी नहीं, उसको नहीं लेना है. मति श्रुत और औदी तीन को लेना है. सभी प्रकृतियों का जघन्य काल अंतर्मुक्त है, यह तो स्पष्ट है. सभी प्रकृतियों का अंतर्मुक्त क्यों है? क्योंकि मति ज्ञानी कब तक रहेगा? दोनों प्रकार से हो सकता है. यानी सम्य दृष्टि है ना, मति ज्ञानी यानी सम्य दृष्टि है, यानी मति ज्ञानी तो 12वें गुणस्थान तक रहेगा एक बार. तो उसका मति ज्ञान कब खत्म हो जाएगा? या तो केवल ज्ञान होने पर या मिथ्या ज्ञान होने पर. तो सम्यक दर्शन अवस्था में कम से कम अंतर्मूर्त रहता है, या सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर कम से कम अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त होता है. या तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, मति अज्ञान होगा, या तो केवल ज्ञान प्राप्त होगा. इसलिए यह अंतर्मूर्त घटित किया है, क्योंकि कोई भी सम्यक दृष्टि अंतर्मूर्त काल के भीतर क्षपक श्रेणी पर चढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है. वो 12वें गुणस्थान में उसके वो प्रकृति का अभाव हो जाता है, वो विभक्ति हो जाती है. तो वहां तक का ही काल लेना है, या मिथ्यात्व में जा सकता है, यानी केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या फिर दोबारा मिथ्यात्व में जाने के लिए एक अंतर्मूर्त है, तो वो उसका उतना काल घटित हो जाता है. ये तो जघन्य काल की बात की, पर उत्कृष्ट काल में कुछ विशेषता है, यानी उसका सम्यक तो बना रहे और इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल बताना है. तो कहते अभी उसमें अलग अलग प्रकृतियों की बात बता रहे. अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर होता है. ये जो वेदक सम्यक का काल है उसको यहाँ लिया है. अनंतानुबंधी का काल यानी उसकी सत्ता वाला लेना है, तो कुछ कम 66 सागर क्यों? क्योंकि मति ज्ञानी आदि जीवों के अनंतानुबंधी का अधिक से अधिक काल तक सत्व वेदक सम्यक्त्व के साथ ही प्राप्त होता है. कैसे? तो देखो, क्षायिक सम्यक्त्व को तो उसका सत्व ही नहीं है, तो कहाँ अनंतानुबंधी का सत्व पाया जाएगा? या उपशम समय दृष्टि हो या क्षाउक्षम यानी वेदक सम्यक्त्व, तो उपशम सम्यक्त्व का काल ही अंतर्मूर्त है, तो उसकी तो कोई यहाँ बात नहीं है. इसलिए अनंतानुबंधी का सत्व अधिक से अधिक किस सम्यक्त्व के साथ पाया जाएगा? तो वेदक सम्यक्त्व. और वेदक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल कृतकृत्य वेदक के काल को मिलाने पर पूरा 66 सागर होता है. ये कृतकृत्य वेदक काल सहित पूरा ये वेदक. अब यदि इसमें से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के क्षपण काल को कम कर दिया जाए, देखो कृतकृत्य वेदक है उसको भी वेदक कहेंगे, परंतु कृतकृत्य वेदक अवस्था में अनंतानुबंधी है क्या नहीं है उसकी? जब कृतकृत्य वेदक अवस्था चल रही है तो वहां अनंतानुबंधी का सत्व है कि नहीं? जयबेन, कृतकृत्य वेदक अवस्था में अनंतानुबंधी है क्या नहीं है? हाँ? नहीं, उद्वेलना की बात नहीं है। कृतकृत्य वेदक यानी शायिक सम्यक्व होने जा रहा है, नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले विषय योजना किया है, फिर मिथ्यात्व का क्षय किया है, समय मिथ्यात्व का क्षय किया है, तभी कृतकृत्य वेदक हुआ है। और हमें अनंतानुबंधी का सत्व वाला काल घटित करना है, तो क्षपणा से शुरू की उसने अनंतानुबंधी की विषय योजना, उसके पूर्व तक अनंतानुबंधी का सत्व था न, इसलिए अनंतानुबंधी के सत्व वाला जो जीव लेना है सम्यक्त्व के साथ अनंतानुबंधी का सत्व, तो कृतकृत्य वेदक होने के पहले जब उसने विषय योजना की वहां तक ही लेना है। आगे जो है उसका तो वो अनंतानुबंधी के सत्व बिना का काल है, इसलिए 66 सागर में से उसको कम करना पड़ेगा। देखो इस वाक्य को फिर पढ़ते हैं। हमें ये क्या देखना है, 119 पृष्ठ पर हम विशेषार्थ में देख रहे हैं, तीन तीन छठी लाइन में हमें तो यहाँ अनंतानुबंधी का अधिक से अधिक सत्व कितने काल तक रहता है मति ज्ञानियों को, मति ज्ञानी नहीं समय दृष्टि है, मति ज्ञानी वाले जीवों को तो कहते हैं उसका अधिक से अधिक सत्व अनंतानुबंधी का सत्व वेदक सम्यक्त्व के साथ प्राप्त होता है, और वेदक सम्यक्त्व का अधिक से अधिक काल कितना है तो 66 सागर, परंतु 66 सागर वो कृतकृत्य वेदक वाले का काल मिलाकर गिनना है, परंतु कृतकृत्य वेदक के अंतिम अंतर्मूर्त जो है अनंतानुबंधी का विषय योजना और मिथ्यात्व और समय मिथ्यात्व का क्षय सबको मिलाकर वाला जो अंतर्मूर्त है उसको 66 सागर में से कम करना है। तो ये अंत की ओर हमने कम कर दिया। अब यहाँ पढ़ते हैं, वेदक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल कृतकृत्य वेदक के काल को मिलाने पर पूरा 66 सागर होता है। अब यदि इसमें से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के क्षपण काल को कम कर दिया जाए और वेदक सम्यक्त्व के प्रारंभ में हुए, यानी यहाँ तो क्षपण काल इतना ही दोनों का ही मिला है, परंतु उसके पहले अनंतानुबंधी की विषय योजना हो गई वहां से गिनना है, उसके पश्चात भी एक अंतर्मूर्त तक वो विश्राम लेता है, फिर मिथ्यात्व की क्षपणा करता है, क्षपण काल में इस सबको ले लेना। अब वहां से तो कम की अनंतानुबंधी की सत्ता वाला नहीं था वहां, परंतु उसके पहले उसने उपशम समय को प्राप्त किया था तब तो अनंतानुबंधी की सत्ता थी मति ज्ञान के साथ। तो कहते वेदक सम्यक्त्व के प्रारंभ में हुए उपशम सम्यक्त्व के काल को मिला दिया जाए, वो वाला अंतर्मूर्त उसमें मिलाना, हमें मति ज्ञानी की प्ररूपणा चल रही है, तो उपशम सम्यक्त्व के साथ भी अनंतानुबंधी की सत्ता थी तो वहां भी वह मति ज्ञानी था, और बाद में वेदक सम्यक्त्व में भी मति ज्ञानी यानी सम्यक मति वाला है और उसके अनंतानुबंधी की सत्ता है, तो ये पहले वाला अंतर्मूर्त मिला देना। उपशम सम्यक्त्व के बिना वाला वेदक नहीं लेना है यहाँ, उपशम सम्यक्त्व क्योंकि हमको मति ज्ञान का बढ़ाना है, ऐसा भी कोई जीव हो सकता है कि सादी मिथ्यात्व अवस्था में से वो वेदक सम्यक्ति हो जाए, परंतु वो मति ज्ञान का काल वो घट जाएगा उसका, हमें तो मति ज्ञान का काल बढ़ाना है, उत्कृष्ट घटित करना है, इसलिए पहले उपशम सम्यक्ति से जुड़े। हाँ, मिथ्यात्व में से उपशम ही सम्यक्ति हुआ, अब मति ज्ञान विथ अनंतानुबंधी चालू हो गई ना, मति ज्ञान वहां से शुरू हुआ उसका, अब वहां से उपशम सम्यक्त्व में से डायरेक्ट वो वेदक हुआ, बीच में मिथ्यात्व में जाता है फिर मति ज्ञान से मत्य ज्ञान हो जाएगा, मति अज्ञान हो जाएगा, उसको नहीं लेना। तो कहते उपशम सादी मिथ्या दृष्टि की जरूरत नहीं है, क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि लेते हैं और डायरेक्ट वेदक करते हैं तो मति ज्ञान का काल घट जाएगा, हमें पहले उक्षम सम्यक मति ज्ञानी है, तो उक्षम सम्यक तो हमें एक अंतर्मुख बिताए और फिर वेदक में 66 सागर पूरे बिताना है, ऐसा जीव लेना। तो उक्षम सम्यक के काल को मिला दिया जाए तो यह काल 66 सागर से कम होता है। वो आखिर वाला अंतर्मुहूर्त घटाया और उक्षम सम्यक का अंतर्मुहूर्त मिलाया, फिर भी 66 सागर से कुछ कम होता है। अतः अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर कहा है। मति ज्ञानी के यानी मति ज्ञान वाले के अनंतानुबंधी का सत्व कितने काल तक अधिक से अधिक पाया जाए, इतने काल तक। वो बीच में बिना विसंयोजना वाला जीव लेना। बहुत सारे जीव तो बीच में वेदक समय के काल में विसंयोजना करते रहते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं ली। यह अनंतानुबंधी के सत्व वाला जीव लेना है। और इस काल में मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति के क्षपण होने तक के काल को क्रमशः मिला देने पर मिथ्यात्व आदि प्रत्येक का काल क्रमशः साधिक 66 सागर हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं? अब अनंतानुबंधी का सत्व अधिक से अधिक कितने काल तक रहता है मति ज्ञान के साथ यानी सम्यक दृष्टि के, तो कुछ कम 66 सागर वो कैसे घटित किया हमने देखा। अब मति ज्ञानी जीव है और मिथ्यात्व की सत्ता वाला है, तो मिथ्यात्व की सत्ता अधिक से अधिक कितने काल तक रहेगी उसकी? वो भी 66 सागर उपशम समय को प्राप्त किया, फिर वेदक समय को में रहा, अब वहां अनंतानुबंधी के विसंयोजन के बाद वाला उसमें से घटाया था। अब यहाँ जब तक मिथ्यात्व का क्षय नहीं होता है उसको रखना और उसके पश्चात वाला काल घटा देना। वो वहाँ मिथ्यात्व का क्षय होने तक का अंतिम समय का काल रखना, बाकी उसमें से बात करना 66 में से। तो वो क्या कहते, मिथ्यात्व की क्षपणा होने का काल मिला देना। अभी हमने जो अनंतानुबंधी का काल देखा उसमें मिथ्यात्व के क्षपणा में जितना अधिक समय लगता है वो तो उसमें रखना सत्व वाले के साथ। अब सम्यक मिथ्यात्व का अधिक से अधिक काल कितना है मति ज्ञानी जीव को, तो जब उसने औषमिक समय को प्राप्त किया तो वहां से लेकर उस मति ज्ञानी गिनना है। वो पहले उसके सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता थी सादी मिथ्या दृष्टि को, परंतु हमें वो नहीं देना है। तब उसको मति ज्ञान नहीं था, मति अज्ञान था। अकेले सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता कितने काल तक रह सकती है अकेले? मति ज्ञान की अगर हम उसको गौण कर देंगे, वो अज्ञान है क्या मति ज्ञान है उसको गौण करेंगे, तो हमने वो पल्ले का असंख्या का भाग तीन बार लिया, वो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व में आता जाता रहा था ऐसा लिया, उसकी बात यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि हमें मति ज्ञानी जीव लेना है। उसका सम्यक दर्शन बना रहे और सम्यक मिथ्यात्व का काल कितना होगा अधिक से अधिक, तो उपशमिक समय तो प्राप्त किया तभी से उसके सम्यक मिथ्यात्व शुरू हुआ, फिर वेदक समय दृष्टि हुआ और वेदक समय दृष्टि अवस्था में वो क्षय करना शुरू किया उसने, और क्षय करना शुरू हुआ और सम्यक मिथ्यात्व का उसने क्षय किया उसके एक समय पहले तक, उसकी सत्ता है उसको ले लेना। मति ज्ञान बना रहना चाहिए। आप कहेंगे वो तो वेदक समय को वाला तीसरे गुणस्थान में आता है फिर 66 सागर, परंतु उसका मति ज्ञान नहीं रहता, तब मिश्र ज्ञान हो जाता है। इस तरह से सोचना है। अभी देखेंगे उसकी बात। अभी हमने मिथ्यात्व को देखा, अब सम्यक मिथ्यात्व को देखा, अभी मति ज्ञान के साथ सम्यक प्रकृति का अधिक से अधिक काल कितना है। तीनों अलग अलग लेना, हर एक का अपना अपना काल कितना है। तो मिथ्यात्व के लिए हमने मिथ्यात्व के क्षपणा तक का काल रखा, बाद का निकाल दिया। सम्यक मिथ्यात्व के लिए और अंतर्मुह एक अंतर्मुहूर्त उसमें बढ़ा दिया, और सम्यक प्रकृति के लिए पूरे 66 सागर, 66 सागर प्लस पहले ऑप्शन ही सम्यक्त्व का भी काल लेना। तो क्रमशः मिला देने पर प्रत्येक का काल क्रमशः साधिक 66 सागर हो जाता है, क्योंकि उनमें औपशमिक सम्यक्त्व का काल भी मिलाना और ये मिथ्यात्व के क्षपणा का काल भी मिलाना। अकेला अनंत अनुबंधित था तो उसमें से कुछ कम था 66 सागर में, अब इसमें एक एक अंतर्मूर्त मिला है तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तथा नहीं कम करना, साधिक लेना है। देखो वेदक सम्यक्त्व का छासठ सागर के शुरू में नहीं, छासठ सागर तो पूरा वेदक का काल रखना है और उपशम का काल एक्स्ट्रा एडिशनल अंतर्मूर्त है। हमें तो सम्यक्त्व के साथ यानी मति ज्ञान के साथ मिथ्यात्व की सत्ता, मति ज्ञान के साथ सम्यक प्रकृति की सत्ता, मति ज्ञान के साथ सम्यक जो कुछ है उसको देखना है। हिसाब कैसे करना है थोड़ा ख्याल में आता है? अब जो अन्य 21 प्रकृतियों की सत्ता, तो मति ज्ञान के साथ अन्य 21 प्रकृतियों की सत्ता, तो मति ज्ञान बना रहे वो भले औपशमिक सम्यक दृष्टि हो, वेदक हो या क्षायिक भी हो जाए, तो भी अन्य 21 की सत्ता बनी है तो कहां तक रहेगी? जहां तक उसके अपने अपना जो क्षपणा का उसका काल है तब तक। तो यहां देखते शेष 21 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्तकम 4 पूर्व कोटि अधिक 66 सागर प्राप्त होता है, क्योंकि संसार अवस्था में सामान्य सम्यक्त्व का काल 4 पूर्व कोटि अधिक 66 सागर है। इसमें से चारित्र मुनि की क्षपणा के बाद के अंतर्मूर्त काल को कम कर देने पर उक्त काल प्राप्त हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं? 21 प्रकृतियों का जो काल बताया है उन्होंने सम्यक्त्व का काल कितना होता है अधिक से अधिक, सम्यक्त्व का काल वो 66 सागर है और उसमें 4 पूर्व कोटि अधिक ले लिए। क्यों? क्योंकि वो तो क्षपणा करेगा ना, तभी वो सम्यक्त्व रहेगा और संसार अवस्था में रहेगा। नहीं, नॉट ओनली शायद जो मिथ्या सम्यक दृष्टि है चौथे गुणस्थान वाला, उसको 21 प्रकृतियों की सत्ता है कि नहीं है? मात्र 21 की वो बात नहीं चल रही है, एक सम्यक दृष्टि जीवों में 21 की सत्ता जिन जिन को है, किस किस को है? अन्य प्रकृतियों की बात हो गई, हमने अनंतानुबंधी की किसको कहाँ तक है वो देखा, मिथ्यात्व को किसको कहाँ तक है वो देखा, सम्यक मिथ्यात्व को देखा, सम्यक प्रकृति को देखा, उसकी की बात नहीं, निकल जाने वाली बात नहीं है, वो साथ भले न रहे, इन एडिशन 21 की कहाँ तक है उसकी बात चल रही है। मति ज्ञानी जीव को अभी 21 में से हम लेते हैं अप्रत्याख्यानावरण, तो सम्यक दृष्टि है और अप्रत्याख्यानावरण की सत्ता कब तक है? तो जब से लेकर पहले औपशमिक सम्यक हुआ, फिर वेदक हुआ, फिर क्षायिक हुआ, फिर भी अप्रत्याख्यानावरण है कि नहीं उसको? जब वो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा और अप्रत्याख्यानावरण का क्षय करेगा तब तक उसकी सत्ता है, ये बात यहाँ चल रही है। 21 की सत्ता वाला अकेला क्षायिक नहीं लेना है यहाँ, अकेले क्षायिक में ये कैसे घटित हो गए 4 पूर्व कोटि और चारों पूर्व, अकेले क्षायिक में 4 पूर्व कोटि और 66 सागर घटित ही नहीं हो गए, क्योंकि क्षायिक होने के बाद जिस भव में क्षायिक हुआ उसके बाद एक भव होगा और फिर आके वो क्षायिक के साथ तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, तो क्षायिक के साथ उसके 66 सागर हो गए ही कैसे? ये सामान्य सम्यक्त्व के साथ कैसे हो सकते हैं? तो पहले भव ने उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया, पूर्व कोटि का था, फिर देव में चला गया, फिर मनुष्य में आया, उसका सम्यक्त्व चला, फिर वो देव में चला गया, फिर पूर्व कोटि वाला हुआ, तब जाके उसने क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया, फिर और एक वो देव का भव किया और फिर आया यहाँ, और जब उसके अंत में उसने क्षपक श्रेणी मांडी तब 4 पूर्व कोटि हो सकते, समझ में? देखो मैक्सिमम लेना, पूर्व चार पूर्व कोटि और फिर उसके 66 सागर, सामान्य सम्यक्त्व का काल, उसमें औपशमिक सम्यक्त्व भी है, वेदक भी है और क्षायिक भी है। वो 21 प्रकृतियों की सत्ता तब तक रहेगी जब तक उनमें से वो क्षय नहीं होगा। 21 को एक साथ नहीं कंसीडर करना, 21 में से अपनी अपनी सत्ता कहाँ तक है, जब तक उसका क्षय नहीं होता तब तक। तो अंतिम भाव में वो क्षपक श्रेणी मांडेगा, वो भी उसका काल लंबा नहीं ना, हमको सत्ता वाला उत्कृष्ट काल। तो एकदम अंत के अंतर्मूर्त छोड़कर यानी बड़ी आयु लेना है और फिर वो 13वां 14वें का काल अंतर्मूर्त रखना है। 13वें का काल बड़ा करते हैं तो इनकी सत्ता वाला काल कम हो जाता है। इस तरह से सोचना कि उसका अधिक से अधिक काल कैसे हो सकता है। शायद भले हो परंतु 21 की सत्ता कब तक रहेगी, जब तक क्षपक श्रेणी नहीं मानता है। पर क्षपक श्रेणी मानता है वो समझो उसने 8वें साल के बाद मान ली, तो उसकी सत्ता के साथ वो काल घट गए ना उसका। हमें सत्ता के साथ काल बढ़ाना है तो 13वें गुणस्थान का काल हमको कम से कम रखना है और 14वें का भी, यानी अंतिम भव उसका एक पूर्व कोटि का, उसमें 13वें 14वें का काल छोटा एक अंतर्मूर्त बाकी रखना, तब तक उसकी सत्ता है। तो जब क्षपक श्रेणी मांडेगा और जब उन कर्मों का क्षय करेगा अपने अपने पोजीशन पर, जैसे पहले 8 कषायों का हो जाएगा, हमने देखे थे ना, इस तरह से उसकी एक एक घटाते जाएगा, फिर वेदों का 9 कषायों का वगैरह। चार पूर्व कोटि के मनुष्य के पहले पूर्व कोटि में समय को प्राप्त किया, फिर वो हमते कभी 22 सागर कभी 22 सागर है, बीच बीच में ऐसे करते करते उसके वो 66 सागर, यानी वेदक सम्यक्त्व के साथ उसके अधिक से अधिक 66 सागर होते हैं, उसी में वो पूर्व कोटि भी आ गए और बाद में उसको क्षाई करके वो सपना मुक्त करता है। 66 सागर में नहीं, वो अधिक लिए, चार पूर्व कोटि अधिक 66 सागर, हाँ वो लास्ट वाला अंतर्मुख उसमें से माइनस कर। मनुष्य और देव को ही लेना है हमको, ये पहले भाव में उसको 3 इंच भी ले लेते कोई हर्जा नहीं है। इनमें से 3 इंच में 8 साल नहीं होता, वो अंतर्मूर्त भी किस में होता है, किसके होता है, सम्मूर्छन के होता है, और सम्मूर्छन का औपशमिक नहीं होता, वेदक होता है, तो उसका वो काल कम हो जाएगा। यानी उसमें कुछ महीने ऐसे लिए ना औपशमिक समय के लिए, जो सम्मूर्छन है वो अंतर्मूर्त में प्राप्त कर सकता है, परंतु सम्मूर्छन जीवों को प्रथम औपशम समय तो नहीं होता, उसके तो वेदक ही होता है। और जो गर्भज तिर्यंज है उन्हीं को प्रथम औपशम समय तो हो सकता है। हाँ, क्योंकि मति हमारा क्राइटेरिया मति ज्ञान है। वेदक का काल 66 सागर है, वो क्षायिक हो जाए ना लास्ट भाव में, उसको देवों में भेजना है, वहाँ उसको क्षायिक करा दो, ऐसे होता है ना। वो लास्ट वाला जो है चारित्र मोहन की क्षपणा होने के बाद मोक्ष जाने के लिए अंतर्मूर्त रखना, वो अंतर्मूर्त कम लेना, यह लिखा है। इसमें से ये जो हमने चार पूर्व कोटि अधिक 66 सागर देखे, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूर्व कोटि तो संख्यात है और ये तो असंख्यात वर्ष है, पल्ले में भी असंख्यात अबज वर्ष होते हैं और 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। अधिक यानी 66 सागर में चार पूर्व कोटि मिला देना, ये इसकी करना नहीं होती, ऐसी भाषा है, एक अधिक लाख ऐसा कहेंगे, यानी लाख में एक मिला देना, ऐसे 66 सागर में चार पूर्व कोटि मिला देना। इसमें से चारित्र मोहिनी की क्षपणा के बाद के अंतर्मूर्त काल को, बाद के यानी कौन सा भी, चारित्र मोहिनी की क्षपणा चालू हो गई नौवे से, अपने अपने प्रकृति अपने अपने पोजीशन पर क्षय हो जाएगी, جیسے آٹھ جو ہے کشا ہے وہ تو نوے گن استھان میں کشے ہوا, تو نوے کے بعد کا جو اس کا نوے کا اروت بھاگ دسواں گیا بارواں دسواں بارواں تیرواں چودواں یہ پورا مل کر انترمورت گھٹانا. ابھی لوگ کے لیے اگر ہم کہیں گے لوگ جو پرکرتی ہے اس کے لیے کون سا انترمورت گھٹانا, تو دسویں تک تو ہے تو بارواں تیرواں چودویں کا مل کر جو انترمورت ہوگا اس کو گھٹانا, اس طرح سے اس کا حساب کرنا ہے. وہ سب کے لیے انترمورت ہی کہیں گے تو ہر ایک کا اپنا اپنا انترمورت الگ ہوگا. ویدوں کے لیے کہیں گے یا کرودھ کے لیے کہیں گے تو کرودھ کی کھپنا ہونے کے بعد جو انترمورت بچا ہے نوے کا اروریت بھاگ دسواں بارواں تیرواں چودواں وہ ملا کر انترمورت, اس لیے الگ الگ لینا ہے سب کی. ایک ساتھ تو کھپنا ہوتی نہیں ہے, اپنی اپنی پوزیشن جہاں ہے اس کے پشچات والا انترمورت مائنس کر دینا. پرشن نہیں سمجھ میں آئے. ہاں سامان سمجھ تو لکھا نا اوپر. اپنی بات چل رہی ہے اور سامان سمے تو آپ ہی بتاؤ اس میں کیا لینا ہے. ہاں کرو نا, تو پورو کوٹی جب کہیں گے تو جتنا وہاں اچت ہے اتنا اس میں سے گھٹانا. اب دیکھو اب یہ تو متی گیانی شدھ گیانی اودھی گیانی کی بات ہو گئی, اب منپرے گیانی اور سنیت جیووں کے. پہلے متی گیانی یعنی سمیتو اتنا ہی ہم نے لیا, اب منپرے گیانی جب کہیں گے تو وہ سنیم ہی ہونے چاہیے. دیکھو دیکھو ہم ایک ایک پرکرتی کے بارے میں گن رہے ہیں, انتانوبندی کی کہاں تک ہوتا ہے سمیک درشٹی کے, انتانوبندی کی ستا کہاں تک ہے وہ ہم نے پہلے دیکھی. سمیک درشٹی کے متھیاتو کی ستا, سمیک درشٹی کے سمیک متھیاتو کی سمیک پرکرتی کی, اب سمیک درشٹی کے 21 کی ستا. جب اس کی ستا کہتے ہیں تو انے ہوئے یا نہیں ہوئے اس کی ستا تو ہے نا. متی گیان کے ساتھ وہ اس انے کی ستا کہاں تک رہے گی, ایسا یہاں اپنا وشے چل رہا. 21 سے ستا کہنے سے وہ اکیلا 21 کے ایسا ارتھ کہاں نکلے گا, اکیلے 21 ہو بھی کیسا سکتا ہے, چھاسر ساگر کیسے ہو گئے. وہ تو پہلے ہی میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا, آپ پھر کنفیوژن کر رہے ہیں اس کا. دیکھو ابھی من پرے گیانی کی بات چل رہی, من پرے گیانی کی بات چل رہی, تو من پرے گیان کس کے ہیں, منیوں کے. متی گیان میں ہم نے سمیہ درشٹی ان جنرل بات کی, اب یہاں متی گیان من پرے گیان کہیں گے تو گنستھانوں کی بات ہے نا, تو من پرے گیانی اور سنیت جیووں کے. 28 پرکرتیوں کا جگھنیہ کال انترمورت اور اتکرشٹ کال کچھ کم پورو کوٹی ہے, کیونکہ سنیت پنا بنا رہے, کیونکہ ہمارا کرائٹیریا ہے منپرے گیان کا. اس کو موکش ہوتا ہے چھپنا کرتا ہے کہ وہ بعد میں دوسرے بھو میں جاتا ہے تو اس کا منپرے گیان نہیں رہتا, تو اس کا اتکرشٹ کال گھٹت کرنا ہے, دوسرے بھاؤ میں جائے گا تو دوسرے بھاؤ میں جائے گا تو پورو کوٹی میں پہلا جو ہے سنیم پراپت کرنے کا کال وہ اس کو گھٹانا ہے. تو تب تک اسی لیے نہیں رہا تو منپرے گیان کے ساتھ 28 کی ستا گھٹت ہوگی نا, دوسرے بھاؤ میں گیا تو منپرے گیان نہیں رہا تو اس کو منپرے گیان کے ساتھ کتنا ہوا اتکرشٹ, تو اس کو ایک پورا بھاؤ گننا اور شروع کا جو منپرے گیان پراپت ہونے کے پہلے کا جو کال ہے اس کو گھٹا دینا. अभी जगन्य नहीं घटित किया, अभी उत्कृष्ट बता रहे देखो। अच्छा जगन्य बता रही है, जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि है। अभी अंतर्मूर्त मरण की अपेक्षा से भी ऐसा भी घटित कर सकते हैं ना, मन पर्य हो गया और फिर अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, संयमी हो गए और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया।
हाँ
जो कहीं भी हुआ ऐसा नियम। और अवधि ज्ञान कहाँ होता है? अवधि ज्ञान बारहवें में हो सकता है कि नहीं हो सकता?
बारहवें तक तो रहेगा।
बारहवें में हो सकता है कि नहीं हो सकता? अंतिम समय में भी हो सकता है। तो ये आपने मनोपरी ज्ञान उत्पन्न होने की छठे सातवें की बात क्यों की? कहीं भी उत्पन्न होने की बात है ना, उत्पन्न कहीं भी हो सकता है, उसका जो उपयोग रूप है वो छठे में ही होता है। पहले का मनोपरिज्ञान कब होगा? संयम होने के बाद। तो संयम प्राप्त करने के लिए तो 8 साल पूरे होने चाहिए, तब वो मुनि दीक्षा लेंगे, संयम प्राप्त हो जाएगा। और संयम प्राप्त होने के पश्चात उसको या उसके साथ साथ उसको मनोपरिज्ञान प्रकट हो जाएगा। उत्कृष्ट काल में पूर्व कोटि जो उर्वरित आयु है उसको ले लेंगे। अब कम से कम काल में क्या है, मनोपरिज्ञान प्रकट हुआ या संयमी हो गया और अंतर्मूर्त में वो शपक श्रेणी चढ़ गया तो 28 की सत्ता का नाश कर दिया उसने। मन परिज्ञान ऐसा वो नीचे नहीं गिरता, या तो वो मोक्ष जाएगी या तो स्वर्ग में जाएगी। ये अवधि ज्ञान में है वो प्रतिपाती है, प्रतिपाती है वो ही यमान वर्धमान। हाँ तो रुजुमति वाले तो मेरे ख्याल से वो मोक्ष कामी होते हैं। मन परे ज्ञानी और संयत जीवों के 28 प्रकृतियों का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि है। इसी प्रकार परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयत जीवों के कहना चाहिए। अब परिहार विशुद्धि संयत का उत्कृष्ट काल, परिहार विशुद्धि संयम है और किसका काल? 28 की सत्ता है। हाँ, पहले उसमें से 38 साल कम करने पड़े पूर्व कोटि में से, और फिर बाद में कितने कम करने पड़ेंगे? कौन सा वाला अंतर? यानी छठी सातवें में से ऊपर चढ़ा तो उसका ये तो परिहार विशुद्धि 8 से लेकर 14 तक का काल कम करना पड़ेगा। परिहार विशुद्धि कहाँ है? छठे और सातवें में ही है। अभी अकेले संयम लेना है तो छठे से आगे तक संयम है, तो जब तक सपना पूरी होती है तब तक का काल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो संयम ही है ना। आगे संयम भले रहे उनका, परंतु सपना पूरी हुई तो 28 की सत्ता वाला हम वहां तक कहेंगे। विशेषण, इन सब मार्गण वाले जीवों का जघन्य काल अंतर्मूर्त है यह तो स्पष्ट है, तथा कौन सा परिहार विशुद्धि छठी सातवें में ही होती है। तो परिहार विशुद्धि का काल हमें गिनना है, उसके बाद उसका कोई अन्य संयम हो गया, यानी सामयिक छेदों पर स्थापना हुआ तो अपना क्राइटेरिया बदल गया, तो अपने को उतना ही काल लेना है। परिहार विशुद्धि का अधिक से अधिक या कम से कम काल लेना है, अंतर्मूर्त हो सकता है या वो पूर्व कोटि में कुछ कम में वहां 38 साल पहले कम करने पड़ेंगे। तो कहते हैं जघन्य काल अंतर्मूर्त वो तो स्पष्ट है, तथा उक्त सभी मार्गणा वालों का उत्कृष्ट काल सामान्य रूप से यद्यपि देशों न पूर्व कोटि, देश ऊन यानी कुछ कम पूर्व कोटि, ये कुछ कम का प्रमाण अलग अलग होगा, पर देशों से कहां कितना काल लेना चाहिए इसमें विशेषता है। मनोपरे ज्ञानी और संयत के देशों से 8 वर्ष और अंतर्मूर्त लेना चाहिए। 8 वर्ष के बाद अंतर्मूर्त में हाँ वो तो संयत हो जाएंगे और मनोपरिज्ञान भी प्राप्त हो। परिहार विशुद्धि संयत के देशों से 38 वर्ष लेना चाहिए। कुछ आचार्यों के मत से 22 या 16 वर्ष लेना चाहिए, क्योंकि उनके मत से 22 या 16 वर्ष में परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त हो जाता है। ये तो हमने पहली बार यहाँ पढ़ा, अभी तक तो 38 वर्ष ही पढ़ा था। तथा संयता संयत के देशों में 3 अंतर्मुहूर्त लेना चाहिए। ये 3 अंतर्मुहूर्त कैसे लेना है? कैसा गिनना? 3 अंतर, पहला कौन सा? पहला अंतर्मुहूर्त पर्याप्ति पूरी होने का, दूसरा अंतर्मुहूर्त विशुद्धि का, और तीसरा अंतर्मुहूर्त समय को संयमासंयम प्राप्त करने का। डायरेक्ट संयमासंयम ही हो जाएगा वो। इस प्रकार जिस मार्गणा का जितना उत्कृष्ट काल है, उस मार्गणा का काल ही मार्गणा में प्रकृतियों का काल है। 3 अंतर्मुहूर्त यानी पहला पर्याप्ति पूरी होने का, फिर विशुद्धि होती है, विशुद्धि का एक अंतर्मुहूर्त, और फिर समय को प्राप्त करने के लिए और एक अंतर्मुहूर्त। तिर्यंश की अपेक्षा से 3 अंतर्मुहूर्त होते हैं। मनुष्यों में लेना है तो 8 वर्ष लेने पड़ेंगे संयमा संयम प्राप्ति के लिए।
ये संयम सम्यक्ति नहीं हो सकता?
सम्यक्ति होगा ना। कौन सा?
जन्म से समझ वाला
नहीं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और जन्म से जन्म से समय दृष्टि कैसा होगा? समूर्छन जीव जन्म से समय दृष्टि होता ही
नहीं,
क्योंकि भोग भूमि वाले ही जन्म से समय दृष्टि हो सकते हैं तीर्यंचों में। और वो कौन से हो गए जन्म से समय दृष्टि? शायिक हो गए। हाँ, जन्म से तीर्यंच जो समय दृष्टि होते हैं वो शायिक ही होने चाहिए। हाँ, वहाँ तो संहिता संयत होता ही नहीं है। तो संहिता संयत जो लिखा है
वो
और ये वेदक होगा। समूर्छन लिया तो वेदक होना चाहिए। वेदक के साथ 5वां गुण स्थान प्राप्त होगा। इस प्रकार जिस मार्गणा का जितना उत्कृष्ट काल है वो मार्गणा का काल बताया है, और उतना ही मार्गणा में उन प्रकृतियों की सत्ता रहेगी, उतना वहाँ 28 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल है। ये ख्याल में है? कैसे कैसे उसका हिसाब करना, वो मार्गणा कितने काल तक, अभी संहिता संयत गुणस्थान अधिक से अधिक किसको होगी, कितने काल तक? तो पूर्व कोटि वाला होना चाहिए, क्योंकि वो 3 पल्ले वालों में तो 5वां गुणस्थान ही नहीं होता। तो उससे कम यानी कर्म भूमि में उत्कृष्ट आयु कितनी है? तो 1 पूर्व कोटि। मनुष्य के लिए तो 8 साल लगते हैं, इसलिए तीर्यंच में घटाना। और तीर्यंच में कम से कम अंतर्मुहूर्त में प्राप्त करने वाला कौन है? तो ये समूर्छन तीर्यंच। तो उसके वो 3 अंतर्मुहूर्त गिनकर भी 1 अंतर्मुहूर्त होता है। तो कहीं ऐसा भी होगा कि अंतर्मुहूर्त कम करो तो भी उसका अर्थ यही है। एक समय तो प्राप्ति के लिए अंतर्मुहूर्त लगता है ना, उसका प्रोसेस चलेगा, जिसको हम कहते हैं ना करण लब्धि वाला। सामयिक और छेदोप स्थापना संयत के 24 प्रकृतियों का जघन्य काल, ये 24 की बात है, पहले 28 की बता दी उन्होंने, अब 24 का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि है। तथा अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि है। देखो यहाँ अभी समझा रहे, जो जीव उपशम श्रेणी से उतरकर 10वें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान में आकर यह सामायिक में घटित करना है, सामायिक छेदोपस्थापना के साथ और 24 प्रकृतियों का जघन्य काल। देखो जो श्रेणी चढ़ रहा है उसने पहले 24 कर दिए, द्वितीयोपशम प्राप्त किया उसके पहले उसकी यानी उसकी भी संयोजना कर दी, तो 24 का शुरू हुआ, तो वो तो सामायिक छेदोपस्थापना के साथ तो 24 के साथ ही वो चढ़ेगा, तो वहां तो एक समय घटित नहीं हो रहा, तो उसके सामायिक छेदोपस्थापना नहीं रहे और वापस सामायिक छेदोपस्थापना हो जाए, ऐसा कब होता है? तो नौवे तक सामायिक छेदोपस्थापना थी, फिर दसवें में सूक्ष्म सांप्राय हुआ, ग्यारहवें में यथाख्यात हुआ, फिर सूक्ष्म सांप्राय हुआ और फिर नौवे में आया उतर कर। तो सामायिक छेदोपस्थापना के साथ 24 की सत्ता है और एक समय में मर गया। अब ऐसा जीव यहाँ लेना है। तो सामायिक और छेदोपस्थापना संयत के 24 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि है, क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापना का उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि। अब ऐसा लिया इस की विसंयोजना कर दी है और उस संयम उनका बना रहा है, तो ये कुछ कम पूर्व कोटि। तथा अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य काल अंतर्मुख, अनंतानुबंधी की सत्ता वाला सामायिक छेदोपस्थापना, यानी उसने वो विसंयोजना कर दी, तो जघन्य काल अंतर्मुख। और उत्कृष्ट काल उतरे वो नहीं, वहां कैसे होगी उसकी सत्ता? यानी सामायिक छेदोपस्थापना वाले जीव ने 28 की सत्ता वाला था और उसने विसंयोजना करते ही उसके अंतर्मूर्त काल तक उसकी सत्ता थी, ऐसा घटित होगा?
24 की सत्ता हो गई और अंतर्मूर्त वो नीचे आ गया
है। सत्ता वाला लेना है, बिना सत्ता वाला नहीं लेना है। सत्ता के साथ कम से कम काल कितना है? तो अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि है, इसका विशेषण 120 पृष्ठ पर चल रहा है। जो जीव उपशम श्रेणी से उतरकर दसवें गुणस्थान से नौवे गुणस्थान में आकर जघन्य काल एक समय, अच्छा हाँ मैं अनंतानुबंधी का ये अंतर्मूर्त हम अनंतानुबंधी का देखते, ये तो हमने पहले देख लिया है। वहां सामायिक संयम या छेदोपस्थापना संयम के साथ एक समय तक रहकर दूसरे समय में मर जाता है। उस सामायिक या छेदोपस्थापना संयम जीव के 24 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय पाया जाता है, यानी सामायिक और छेदोपस्थापना के साथ 24 की सत्ता। वो मरकर जाएगा तो कौन सा संयम रहेगा उसको? असंयम, असंयम हो जाएगा। भले वो विसंयोजना की है उसकी 24 की सत्ता वाला ही रहेगा, परंतु उसका सामायिक नहीं रहा तो एक समय के साथ वो घटित हो। अनंतानुबंधी का जघन्य काल अंतर्मूर्त सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत के जघन्य काल की अपेक्षा है। यानी सामायिक छेदोपस्थापना जघन्य में जघन्य कितने काल तक रहता है? अंतर्मूर्त, उस अपेक्षा से यहां लेना। यानी ऑलरेडी भी उसके अनंतानुबंधी की सत्ता वाला लेना है ना, हम लेंगे चौथे में से वो छठे सातवें में आ गया, अंतर्मूर्त रहकर फिर नीचे के गुणस्थान में चला गया, इस तरह से लेना उसको। क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापना का जघन्य में जघन्य काल, अंतर्मूर्त तो रहेगा ही वहां पर, ऐसा जीव लेना। तथा इसी प्रकार सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयत के उत्कृष्ट काल की अपेक्षा देशों न पूर्व कोटि जानना चाहिए, क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापना का उत्कृष्ट काल देशों न पूर्व कोटि है। यहाँ देशों से 8 वर्ष और अंतर्मूर्त रहना चाहिए, क्योंकि 8 वर्ष के पश्चात उसके संयम हो जाता है। अब असंयतों में संयम मार्गना चल रही ना, अभी असंयतों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय का काल मत्य ज्ञानियों के उक्त प्रकृतियों के कहे गए काल के समान है। जब असंयत कहते हैं तो पहला गुणस्थान से चौथे गुणस्थान को सभी को हम असंयत कहेंगे, परंतु वहां मिथ्यात्व वो भले सम्य दृष्टि हो जाए तो भी वो तो उसका मिथ्यात्व की सत्ता तो रहेगी, तो असंयत में मिथ्यात्व का जघन्य काल वो असंयत से संयत हो जाएगा, तो असंयत का मिनिमम काल हमको मिलना है। जैसे छठे सातवें से वो असंयमी हुआ और फिर संयम प्राप्त किया तो असंयम का जघन्य काल घटित होगा। हाँ, मत्स्य ज्ञानियों के उक्त प्रकृतियों के, मत्स्य ज्ञानी मति अज्ञानी, मति अज्ञानी में जैसे हमने घटित किया था जगन्य और उत्कृष्ट काल, वैसे यहाँ भी घटित होगा। मति अज्ञानी यानी मति अज्ञानी, असंयम अगर कहेंगे, असंयम के साथ मिथ्यात्व का काल, तो असंयम में से असंयम में आना चाहिए कहीं से, यानी सादी शांत काल, सादी शांत काल घटित करना है तो अर्धपुद्गल बराबर, तथा असंयतों के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का काल कितना है, जघन्य काल क्रम से एक समय और अंतर्मुख, यानी सम्यक प्रकृति का एक समय और सम्यक मिथ्यात्व का अंतर्मुख, और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर है, यानी वहां असंयत रहते हुए इनकी सत्ता है, नहीं तो बाद में जब क्षय करेगा, तथा चक्षुदर्शनी जीवों के सब प्रकृतियों का काल त्रस पर्याप्त जीवों के समान होता है। हाँ, जब तक वो क्षपना नहीं करता है उसके, देखो विशेषार्थ असंयतों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का काल, देखो यहाँ हम घटित करेंगे नीचे, नीचे सब समझाए ना, हम उसको पढ़ेंगे पहले। विशेषार्थ असंयतों में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय सब लिए ना, कषाय के काल के अनादि अनंत, अनादि शांत और सादि शांत, ये 3 भंग होते, क्योंकि असंयत कहने से वो एक इंद्रिय से लेकर और वो पहले गुण स्थान से लेकर चौथे तक सब आ गए। किसके तीन ही हो सकते, अनादि अनंत अभव्यों में, अनादि शांत और सादि शांत, क्योंकि संयम से असंयम ही हुआ तो सादि शांत कहेंगे उसको,
और सादि अनंत हो सकता है, इनके लिए हो सकता है।
सादि अनंत कैसे होगा, असंयम किसी के कैसे होगा, इनके नहीं किसी का भी, असंयम को सादि लेंगे वो आनंद
होगा,
असंयम ही, असंयम का ही क्राइटेरिया चल रहा
है। ये तीन मंग बोला तो कितने मंग हो सकते हैं, 4 ही हो सकते हैं,
ये 3 ही हो सकते हैं। ये प्रकृतियों की सत्ता कैसे आनंद
की अपेक्षा से कुछ नहीं, तो जनरल में मंग कितने हो सकते हैं,
जनरल में 3 ही हो सकते हैं।
कोई क्राइटेरिया मतलब नहीं, केवल काल का क्राइटेरिया।
अच्छा, आपको काल की अपेक्षा, यहाँ ये मोहनी की बात नहीं कर रहे हैं,
मोहनी की नहीं कर रहे।
अच्छा, तो एक तो होगा अनादि अनंत, दूसरा होगा अनादि शांत, तीसरा हुआ सादि अनंत और सादि शांत,
सादि शांत 4 ही होते हैं,
4 ही हो सकते
हैं,
5 हो सकते हैं, पांचवा कौन सा,
शांत अनादि,
शांत और अनादि कैसे हो सकेगा।
सादी अनंत हो गया केवल ज्ञान
का, सादी शांत ही होगा ना, जैसे सम्यक प्रकृति सादी है और उसका अंत हो गया, या सम्यक्त्व है, सादी हुई उसकी और अनंत काल तक रहा, तो सादी अनंत ही हो सकता है। तो और पांचवा भंग बता दीजिए आप। हाँ। कोई बात नहीं, पूछ लेना। तो यहाँ तो असंयतों में, अभी हम सभी प्रकृतियों के नहीं, असंयत जीव है और मिथ्यात्व की सत्ता, तो असंयत बना उसको अनादि अनंत भी रहेगा अभव्य को, और मिथ्यात्व भी बनेगा, और फिर भव्य जीवों में अनादि का है और शांत हो गए, असंयत होते हुए भी मिथ्यात्व की सत्ता, शांत कब कहेंगे हम, या तो उसका असंयम है वो संयम में टर्न हो जाए, या असंयम रहते हुए उक्षायिक हो जाए, तब भी बन सकता है ना, इस तरह से। उनमें से प्रकृति में सादी शांत काल विवक्षित है। जब काल एक जीव की अपेक्षा काल बताया जाता है तो सादी और शांत यानी उसके असंयम की भी आदि और अंत है, ऐसा ही असंयम लेना पड़ेगा। जो संयत जीव अंतर्मूर्त काल तक असंयत रहकर पुनः संयत हो जाता है, उस असंयत के उक्त प्रकृतियों का जघन्य काल अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। ये शादी लेना है ना, असंयम की आदि हुई यानी वो या तो संयम असंयम या संयम में से आना चाहिए, तब उसकी आदि हो गई। और एक अंतर्मूर्त में भी वो संयम असंयम या संयम ही हो जाए तो जघन्य काल अंतर्मूर्त होगा, एक समय वाला कभी कठिन नहीं होगा, क्योंकि एक समय में वो फिर दोबारा पहुंच जाए संयम ही में, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए जघन्य काल अंतर्मूर्त। तथा जो अर्ध पुद्गल परिवर्तन के आदि समय में चाहिए, संयम में हुआ है, समय में यानी जिसके सम्यक प्राप्त होता है, उस सम्यक प्राप्ति के समय से लेकर अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल में मोक्ष जाता ही है। अभी हमको उसको असंयम में अधिक से अधिक काल बिताना है, तो उसने सबसे पहले सम्यक को प्राप्त किया तो संयम ही हो गया। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के पहले समय में या आदि में वो संयम ही हुआ, संयम के साथ ही उसने सम्यक को प्राप्त किया, हमको बाद में उसको असंयम में लाना है। हाँ मुनि होगी अनंतर
होगी,
हाँ कुछ भी चलेगा, संयम को अनंतर उपशम सम्यक्त के काल में। अभी हमको असंयमी बनाना है उनको, छ आवली शेष रहने पर सासाधन सम्यक दृष्टि हो गया। प्रकृति तो सभी अभी 28 बन गई उसकी, अभी उसको उपशम का काल घटाकर सासाधन में लाया, यानी छठे से अभी दूसरे में आ गए, और इसके बाद मिथ्या दृष्टि हो गया यानी सासाधन में आते ही उनके असंयम शुरू हो गया, इसलिए वो छह आवली घटाए उस संयम के काल में से। उपशम के काल में घटाए ने संयम के काल में भी घट गए ना, असंयमी हुआ वहां से। वह जब अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल में अंतर्मूर्त शेष रहने पर संयत होता है, अभी अंतर्मूर्त संयम होने के बाद असंयम पना छूट गया, वो संयमी भी होगा, क्षपक श्रेणी भी चढ़ेगा और मोक्ष भी चलेगा। वो अंतर्मूर्त कम से कम जितना आवश्यक है उतना कम करना उस अंत की ओर से, लास्ट वाला अंतर्मूर्त। तब असंयत के काल का प्रमाण कुछ कम अर्ध पुद्गल न हुआ है, पुद्गल हुआ, पुद्गल परिवर्तन प्राप्त हो जाता है। ये कैसे घटित करता है ये समझना आवश्यक है, ये हिसाब अपने ख्याल में आता है कि नहीं आता इसको देखना। असंयम का काल घटित करने और सादी शांत चाहिए, असंयम की आदि यानी संयम में से असंयम होने चाहिए, इसलिए सादी लिया। तो यह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक काल अभी संसार में नहीं भ्रमण करेगा। तो पहले वाला जो उपशम सम्यक्त में से वो गिरकर शुरू हुआ उसका असंयम, वहां से गिरना, और अंतिम भव में संयम के बाद वो क्षपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष चला जाएगा, वो अंत वाला भी उसमें से कम कर देगा। असंयत के उक्त 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल भी यही है, क्योंकि इतने काल तक उक्त प्रकृतियों का बराबर सत्व पाया जाता है। अपना क्राइटेरिया केवल असंयम इतना ही है, वो बीच में सम्यक दृष्टि होता है कि मिथ्या दृष्टि होता है उसकी बात नहीं है, ये इतना ही का
उसमें
28
थी।
हाँ 28 भी हो ना उसके, अकेले 26 की ही पाई जाती है ऐसा नहीं, अपना 28 में से 26 की बात चल रही है, दो की बात अलग करेंगे, क्योंकि उसका लगातार काल कभी पल्ले के असंख्यात विभाग से या वो फिर असंयम ही रहेगा, समय को भी प्राप्त करेगा फिर मिथ्यात्व में आएगा, उसका काल वैसा घटित करेंगे। वो तो इतना अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक नहीं घटित होगा, इसलिए उसको छोड़कर अन्य की बात की, 26 की बात की तो उनके 28 की सत्ता नहीं है, वो बात नहीं है, 26 की ही बात कर रहे हैं। दो प्रकृतियों की बात अलग से करेंगे। जो संयत जीव कृतकृत्य वेदक के काल में एक समय शेष रहने पर मरकर अन्य गति में जाकर असंयत हो जाता है, अभी कृतकृत्य वेदक है वो, एक समय रहा और अन्य गति में जाकर असंयत हो गया, यानी क्या किया उसने, विक्षायक हो गया ना वो, उस असंयत समय दृष्टि के सम्यक प्रकृति का जघन्य काल एक समय होता है। असंयत होते हुए भी सम्यक प्रकृति का जघन्य काल एक समय कैसे घटित करना है, तो संयमी था
और हाँ
हो सकता है ना, यहाँ तो संयम की बात है, संयम और असंयम ऐसा घटित कर रहे हैं, यानी संयत ने ही क्षपणा प्रारंभ की और कृतकृत्य वेदक होने के अंतिम समय में वो असंयमी हो गए, मरकर असंयम नहीं हुए, मरकर अन्य गति में जाकर असंयत हो गया, क्योंकि असंयमी होने का वैसा सबल नहीं है। हाँ, मरकर वो देव में गए और असंयमी हो गए, तो असंयत काल वो तो कृतकृत्य वो काल उसका जो प्रोसेस चल ही रहा है, वो अन्य गति में गया इसलिए भी थोड़ा रुकना पड़ेगा, ऐसी बात है नहीं है, तो वो तो क्षायिक हो गए, तो सम्यक प्रकृति नष्ट हुई। असंयम में आए तब कृतकृत्य वेदक था, इसलिए सम्यक प्रकृति का एक समय के लिए उदय था, सत्ता भी थी और उदय भी था और उसकी क्षपणा पूर्ण हो गई एक समय में ही। हाँ, तो वेदक में यानी असंयम में एक समय के लिए सम्यक प्रकृति की सत्ता थी, ख्याल में ना, क्योंकि वो कृतकृत्य वेदक का एक समय बाकी था तब वो मरकर असंयमी हुआ। सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाला जो संयत जीव अंतर्मूर्त काल तक असंयत रहकर पुनः संयत हो जाता है, उस असंयत के सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल अंतर्मूर्त होता है। हाँ, अंतर्मूर्त काल तक असंयत रहकर
हाँ,
आने के लिए कहीं से भी आता है और जाने के लिए या तो पहला या चौथा है, पर ये असंयत हुआ है वो तीसरे में आया ऐसा लिखा ही नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है और असंयमी है, हमको इतना ही लेना है, तो सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाला छठे में से चौथे में आया, अब पांचवे में से चौथे में लाओ, वो असंयमी बना है अभी और फिर ऊपर गया, सत्ता तो बनी रही, असंयम का काल उसका एक अंतर्मूर्त घटित हुआ, असंयम के साथ सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता इतना ही लेना है, उसके उदय की बात नहीं है, सत्ता की बात। तो जैसे कृतकृत्य में एक समय घटित किया है, ऐसे समय मिथ्यात्व में एक समय क्यों नहीं घटित किया, हो सकता है कि ऐसा है, जो क्षपणा का कार्य शुरू हो जाता है तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना के बाद मरण हो जाए, पहले गुणस्थान में हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब एक बार मिथ्यात्व की क्षपणा शुरू हुई तो मिथ्यात्व की क्षपणा होती है, फिर अंतर्मूर्त विश्राम लेता है, फिर सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा होती है, फिर अंतर्मूर्त विश्राम लेता है और फिर वो सम्यक प्रकृति के जो कुछ आगे का प्रोसेस चलता है, तो ये दो प्रकृतियों की जब तक सपना पूरी नहीं होती तब उतने काल तक मरण नहीं होता, यानी क्षपणा शुरू की और मिथ्यात्व की और सम्यक मिथ्यात्व की क्षपणा पूर्ण न हो तब तक मरण नहीं। वहां कृतकृत्य वेदक वाला तो मरकर वो संयमी था और असंयमी हो गया और एक समय में उसकी वो सम्यक प्रकृति नष्ट हुई, वो तो कह सकते हैं, परंतु यहां ऐसा नहीं कहेंगे। क्योंकि वो तो करण लब्धि वाला है, विशुद्ध परिणाम चल रहे है, क्षपणा का कार्य चल रहा है, तो वो क्षपणा के काल में असंयमी से असंयमी हो जाए ये भी नहीं कहेंगे। जिस गुणस्थान में वो तो चलेगा उसका वो। इसलिए यहाँ असंयम के साथ सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता एक अंतर्मुख, क्योंकि उसका असंयम का काल ही मिनिमम अंतर्मुख संगठित करेंगे। एक साथ अंतर्मुख के लिए असंयमी हुआ और फिर संयमी हो गया। अब कोई एक वेदक सम्यक दृष्टि संयत जीव मर कर 33 सागर की आयु वाला देव हुआ और वहां से मरकर मनुष्य पर्याय में 8 साल तक असंयत रहा, उसके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर प्राप्त होता है। हमने देखा था ना वो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल। असंयम के साथ वाला लिया ना उसको, देव में तो असंयम ही था, उसके पहले तो संयम ही थे। 33 सागर की आयु शुरू हुई और वो असंयम ही उसका हो गया और वहां से फिर मनुष्य में आ गया। हाँ तो यहाँ बढ़ाना चाहिए था, ऐसे क्यों लिखा? मुझे भी यही प्रश्न आया था कि 8 साल की वो क्यों लिखी हुआ, अधिक भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? लास्ट अंतर्मूर्त में संयम प्राप्त करता है। हाँ अब देखेंगे कहीं आएगा फिर दोबारा। आठ साल तक असंयत रहा ऐसा लिखा, 8 साल में क्षायिक हुआ ऐसा कहाँ लगा? हाँ वही, यानी वो संयम प्राप्त करता ही है ऐसा है क्या? कर सकने की नहीं प्रश्न है, अधिक कर सकता होगा तो अधिक से अधिक काल हमको लेना है, तो क्या हम पूर्व कोटि के अंत वाला अंतर्मुख तक ले सकते हैं कि नहीं सकते, इसकी बात हमारे हम देखेंगे इसको कहीं रेफरेंस, वो इसका काल देखना पड़ेगा असंयम का उत्कृष्ट काल। अब हम आगे पढ़ेंगे लेशा मार्गणा के अनुवाद से। ये संयम मार्गणा हो गए, दर्शन मार्गणा नहीं लिखा तो चक्षु दर्शन की बात उन्होंने बता दी थी, उसी के साथ बता दी थी चक्षु दर्शन की बात, वो दर्शन मार्गणा वही खत्म हो गई। अब लेशा मार्गणा के अनुवाद से कृष्ण नील और काकोत लेशा में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय का जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कृष्ण लेशा में साधिक 33 सागर। अब क्या कहना चाहते हैं? लेशा का जो जनरल हम बात करेंगे तो एक एक अंतर्मूर्त में पलटते हैं, मनुष्य तिरंचों की बात कर रहे हैं, वहां 6 लेशाएं पाई जाती है और अंतर्मूर्त में पलटते हैं। तो यहाँ तो ऐसे उत्कृष्ट काल निकालने के वही लेशा चालू रहे अधिक से अधिक काल तक, तो कहाँ होती है? हाँ तो कृष्ण लेशा को सातवां नरक है, तो वहां जाने के पहले भी कृष्ण लेशा में जाकर मरता है और जीव सातवें में जाता है, और सातवें से निकलकर जो यहां जन्म लेता है वो भी अंतर्मूर्त तक कृष्ण लेशा में होगा। इसलिए क्या कहते हैं कि उसमें कृष्ण लेशा के साथ मिथ्यात्व सोलह कषाय और नौ नौकषाय का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त में लेशा पलट गई तो वो जघन्य काल घटित होगा। क्यों? वो एक इंद्रियों में भी होगा, तीन अशुभ लेशा है तो लेशा पलटेगी उनके लिए, मनुष्य तीन इंच सबको।
और ये नाची के साथ
नहीं, वहाँ तो वही लेशा होती है, देवों की भी अपनी अपनी पर्याप्त अवस्था में, अभी गौनवासी में अशुभ होती है,
पर्याप्त सेम लेशा
है, वही की वही लेशा है। नरकों में पर्याप्त अपर्याप्त, ये ऊपर विमान वासियों में भी जो अपर्याप्त की लेशा वही पर्याप्त की है, भवनवासी में ही केवल, क्योंकि वहां जन्मने वाले पहले दूसरे गुणस्थान में जन्मते हैं तो उनकी तीन अशुभ लेशा में जन्मते हैं और बाद में पीत लेशा हो जाती है। अकेले कपोत की बात नहीं है, तीन अशुभ लेशा देवों में भी छह लेशा घटित की है ना, भवनत्री के लिए, भवनत्री का पर्याप्त अवस्था में। कपोत की जब बात आई थी असंगी जीवों के लिए आई थी, असंगी जीव मरकर स्वर्ग में यानी भवनत्रिक में उपजते हैं तो वो कपोत लेशा, क्योंकि वो असंगी में तो कृष्ण लेशा में मरकर वहां नहीं जाते इस तरह से, वहां तो नहीं, वहां पीत लेशा घटित की, कपोत के साथ नरक में जाते हैं। भवनत्रिक में क्योंकि पहले दूसरे गुण स्थान में जो जन्मने वाले हैं ना, पीत तो बाद में हो जाती है। भवनत्रिक अपर्याप्त देखना, छोल ये तीन अशुभ लेशा है वहां पर, छह लेशा कैसी, छह नहीं होती वहां तो, चार होगी पीत के साथ और फिर ऊपर में पद्म वगैरह होती है, तो जब देवों में छह लेशा बताई जाती है तो भवनत्रिक में तीन अशुभ अपर्याप्त में है और प्रत्येक स्वर्ग की अपनी अपनी जो होती है वो ऊपर होती है। तीन अशुभ भी हो सकती है, पर्याप्त भाव तीन अशुभ। मैंने 788 भवनत्रिक देव अपर्याप्त रचना, तीन अशुभ लेशा और गुणस्थान एक मिथ्यात्व और सासागर। पर्याप्त में तो एक पीत ही हो जाती है, एक पीत होती है पर्याप्त में, एक पीत होती है, और असंगी में जो हमने चार की बात की थी असंगी जीव जन्मता है ना वहां, उसकी बात वहां की, उसमें चार होती है, हो सकती है लेशाएं, बाकी चतुरिंद्रिय तक तो तीन अशुभ ही होती है और असंगी में चार लेशा होती है और संगी पंचेंद्रियों में छह लेशा।
असंगी में चार है,
असंगी में चार लेशा हो सकती है,
एक अशुभ और तीन शुभ,
तीन अशुभ एक शुभ, अब देखते हैं यहाँ पर देखो हर एक लेशा में ये जो इसका काल घटित कर रहे हैं हम, या तो मिथ्या तो सोलह कषाय और नौ नौ कषाय की बात, कपोत्तर विग्रह गति में होती है, सभी अपर्याप्त अवस्थाओं में होती है। द्रव्यलेशा कपोत जो है वो मिश्र अवस्था में होती है द्रव्यलेशा, और विग्रह गति में कारमान का योग में शुक्ल लेशा होती है, दो ही लेशा होती है। हाँ, अभी तीन अशुभ में इन प्रकृतियों के 26 की बात पहले उठा रहे हैं, समय मिथ्या तो समय प्रकृति को अभी बाजू रखते, तो ये लेशा रहे तब तक वो लेशा के साथ 26 प्रकृति गठित करे। तो लेशा के साथ अगर हम देखना है तो मिनिमम काल कितना एक लेशा का, तो अंतर्मूर्त, इसलिए अंतर्मूर्त बताया। और उत्कृष्ट काल कितना होता है अपनी अपनी लेशा का, तो कृष्ण लेशा का उत्कृष्ट काल कितना है, तो साधिक 33 सागर। साधिक में एक अंतर्मूर्त पहले वाला पूर्व भोग का और एक अंतर्मूर्त पश्चात वाले भोग का मिलाना। नील लेशा में साधिक 17 सागर और कापोत लेशा में साधिक 7 सागर है, क्योंकि वहां तक वो जीव जाता है कपोत के साथ, पहले में तो जाते ही, पर हमको अधिक से अधिक 7 सागर की बात ध्यान है। तथा उक्त तीन लेशाओं में, अभी ये अन्य प्रकृति की बात हो गई, अब उस लेशा में रहते हुए सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय है। एक समय कैसे घटित करना है, अभी हमको केवल लेशा देखनी है कौन से भाव में है वो बात नहीं देखनी है। तो उद्वेल ना करते करते आया है और उस लेशा में हो आते ही वो उद्वेल ना उसकी खत्म हो। और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व प्रकृति के उत्कृष्ट काल के समान है। अभी जो हमने उत्कृष्ट काल देखा था, मिथ्यात्व प्रकृति का उत्कृष्ट काल कितना है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का कृष्ण लेशा के साथ उत्कृष्ट काल कितना है, कृष्ण लेशा में सम्यक प्रकृति का उत्कृष्ट काल कितना है, साधिक 33 सागर। बोलो कैसा घटित किया, सत्ता में ही तो लेना है। क्यों, देखो कृष्ण लेशा चालू हो गए, जाने के पहले वो तो सादी मिथ्या दृष्टि था, सादी मिथ्या दृष्टि था तो मिथ्या दृष्टि वो कृष्ण लेशा में आया तो उसके सत्ता में सम्यक प्रकृति है, यानी वो उसकी सम्यक प्रकृति सत्ता वाला ही वहां नरक में जन्मा है, साथ में सत्ता वाला है ना, और वहां जाने के बाद उसने फिर सम्यक तो प्राप्त कर लिया है। उपशम करने दो, वेदक करने दो, कुछ भी करने दो, सम्यक प्रकृति की तो रहेगी ना, सम्यक तो प्राप्त कर लिया उसने, सम्यक तो बना रहा तो सम्यक प्रकृति बनी रहती है। हाँ, ऐसा क्यों करते हैं, देखो कोई जीव मिथ्या दृष्टि सातवें नरक में गया और अंतर्मूर्त में उसने सम्यक तो प्राप्त कर लिया और अंतिम अंतर्मूर्त के पहले सम्यक तो छूट गया, तो जब तक सम्यक तो चालू है उसका सम्यक प्रकृति की सत्ता होगी कि नहीं होगी, ऐसा जीव कुछ भी करो उसको उपशम बनाओ या वेदक बनाओ। सादी मिथ्या दृष्टि वो प्रकृति की सत्ता वाला, क्यों नहीं बनेगा, वेदक क्यों नहीं बनेगा, क्यों उद्वेलना का प्रश्न ही कहाँ है। देखो देखो उसका क्या, उतने काल तक क्या वो कृष्ण लेशा में था, पहले उसको कृष्ण लेशा में घुमाने, उसको आप घोटाला कर रहे हैं।
नहीं नहीं, उनका ऐसा कहना है, हाँ। जो मैं समझ रहा था, हाँ। यहाँ शादी में क्या दृष्टि उसके तीन प्रकृति होंगे,
हाँ, उसकी सत्ता में सम्यक प्रकृति है,
मरकर सातवें नरक में गया,
मरने के पहले कृष्ण लेशा में आया तब से काल गिनना,
वहाँ मरने के बाद वहाँ गया, और आपने बताया कि वहाँ जाने के बाद कुछ काल में अंतर्मुर्ख में को कुछ काल में उसने
समय को प्राप्त
समय को बरोबर
कोई भी समय को प्राप्त करने को
अब उनका ऐसा कहना है कि वो बल्ले के असंख्यात में भाग मात्र जो टाइम है
उद्वेलना कर रहा था और बाद में उद्वेलना के पहले पहले समय को प्राप्त कर लिया
समय को प्राप्त ऐसा उसका कहना
यानी उसकी जरूरत नहीं है
हाँ।
कोई भी समय को क्यों ना प्राप्त करे
हाँ।
वो तो कितना करे या नहीं करे तो भी उसका काल तो बढ़ने वाला नहीं है वो वेदक करे या उपशम करे उद्वेलना के पहले उसका कृष्णलेशा के साथ काल तो 33 सागर ही रहेगा
हाँ।
और मिथ्यात्व में आने के बाद भी उसकी समय प्रकृति तो बनी रही कृष्णलेशा का ही अपना प्रकरण है वो कौन सा गुणस्थान में है वो समय दृष्टि है कि नहीं है समय को कब प्राप्त किया इससे कोई लगता नहीं है क्योंकि उसके साथ कृष्णलेशा के साथ सम्यक प्रकृति की सत्ता बनी रहे ये बात हमको
लेकिन ये बद्धायुष्य समझता है पिछले जन्म में बद्धायुष्य
कौन सा अरे वो मिथ्या दृष्टि है ना पहले से
पहले मिथ्या दृष्टि है
पहले मिथ्या दृष्टि है तो सादी मिथ्या दृष्टि ले लो
सादी मिथ्या दृष्टि है
अरे वो तो हो ना ये आहारक की सत्ता वाला भी सातवें नरक में जा सकता
है अभी इन्होंने फिर उसने सातवें बंद करके ही आ गया वो मरने से पहले उसकी कृष्णलेशा आ
गई क्योंकि कृष्णलेशा में मरने वाला ही सातवें में जाएगा जो जिस नरक में जाता है वहां की लेशा उसको मरण के समय ही हो जाती है ये तो नियम से है ना पहले नरक में जाने वाला वो कपोत लेशा में ही मरेगा इस तरह से तो देखो ये सादिक की बात है ये हम चौथी लाइन से पढ़ रहे थे उक्त तीन लेशाओं में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय है ये तो जघन्य काल एक समय हम गठित कर सकते हैं और उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व प्रकृति के उत्कृष्ट काल के समान है जो सादिक 33 सागर वगैरह जो हमने देखा था कृष्ण के लिए सादिक 33 फिर नील के लिए सादिक 17 वगैरह पीत और पद्मलेशा में मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों का जघन्य काल अंतर्मूर्त ये लेशा का जघन्य काल है लेशा पलट जाए तो उसका अंतर्मूर्त काल गठित हुआ और उत्कृष्ट काल पीत लेशा में सादिक 2 सागर पद्मलेशा में सादिक 18 सागर र करो सादिक 2 सागर कहाँ का लिया
सौदर
वैशन और सादिक 18 सागर सहस्रार करते उक्त दोनों लेशाओं में इसी प्रकार सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का काल कहना चाहिए इतनी विशेषता है इनका जघन्य काल एक समय है वो जैसे हमने नरक में गठित किया था वैसे यहाँ स्वर्गों में गठित करना है क्योंकि भले पीत पद्म हो परंतु मिथ्या दृष्टि है ना वहां पर तो वो तो सादिक उसका उतना हो जाए शुक्ल लेशा में मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों का काल कितना है तो मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों का जघन्य काल अंतर्मूर्त ये तो शुक्ल लेशा का जघन्य काल दिया और शेष का जघन्य काल एक समय है तथा सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल सादिक 33 सागर है विशेषार्थ उक्त 6 लेशाओं में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य काल को छोड़कर शेष समस्त प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी लेशा के जघन्य और उत्कृष्ट काल के समान जानना चाहिए अपनी अपनी लेशा का जघन्य उत्कृष्ट काल कितना होता है उसको यहाँ लेना 6 लेशाओं में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल जो एक समय कहा है वह उक्त दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना में एक समय शेष रहने पर उस लेशा के प्राप्त होने से बन जाता है यानी उद्वेलना चल रही है और अंतिम समय उसका है और उसके पहले लेशा पलट गए तो उस विशिष्ट लेशा के साथ एक समय गठित होता है अभव्यों के, ये भव्य मार्गणा की बात चलिएगा, अभव्यों के 26 प्रकृतियों का काल कितना है, अनादि अनंत है, उनमें तो दूसरा कोई विकल्प ही नहीं ना। शायद उनमें 28 का होगा कि नहीं होगा, अभव्यों में 28 का होगा ही नहीं। अब क्षायिक सम्य दृष्टियों में ये सम्यक तो मार्गणा चल रही है, 21 प्रकृतियों का क्षायिक समय दृष्टि है ना अभी, तो क्षायिक समय दृष्टि में 26 का, 24 का, 28 का ऐसा कह नहीं सकते, तो उसमें 21 का होगा। 21 प्रकृतियों का जघन्य काल अंतर्मूल और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। अभी क्षायिक हो चुका है तो इस भाव से फिर 33 सागर वाले देव में जाएंगे, फिर मनुष्य को होकर फिर चले जाएंगे। वेदक सम्य दृष्टियों में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का काल कितना है, तो जघन्य काल अंतर्मूल और उत्कृष्ट काल देशोन 66 सागर है। देशोन क्यों कहा, हमने देखा ना वो तो कृतकृत्य वेदक में ही पूरा 66 सागर हो जाता है, इसलिए उसमें वो देशोन उसका अपना अपना काल घटा। सम्यक प्रकृति 12 कषाय और 9 कषायों का काल कितना है, वेदक सम्य दृष्टि में इनका काल पूछा है, क्योंकि वेदक सम्य दृष्टि में इनका काल 66 से कम होता है, क्योंकि मिथ्यात्व के क्षय होने के बाद भी उसको वेदक कहेंगे, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय होने के बाद भी उसको वेदक कहेंगे, अनंतानुबंधी की विषय योजना के बाद भी वो वेदक ही कहेंगे उसको, इसलिए इनका काल तो कुछ कम हो जाता है। परंतु सम्यक प्रकृति 12 कषाय और 9 कषाय का काल कितना है, वेदक में चल रही बात, तो जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल 66 सागर है, ये पूरे 66 सागर कहेंगे इसको। वेदक सम्यक के साथ सम्यक प्रकृति की सत्ता पूरे 66 सागर है, और अन्य जो कषाय वो तो रहेगी ही, क्योंकि उसकी की सपना तो ऊपर जाके होती है। एक सौ 32 सागर वेदक सम्यक तो है क्या, उसका चल रहा है क्या, वेदक सम्यक तो वाली मार्गणा में उसको नहीं ले सकते। असंयम वाले में ले या अन्य किसी में ले लो, इसमें नहीं होगा, मति ज्ञानी में हम ले सकते हैं, वो मति ज्ञानी में हमने लिया था उसको, वेदक सम्यक तो में नहीं। उपशम सम्य दृष्टियों में, ये उपशम की बात अभी है, 28 प्रकृतियों का काल कितना है, जघन्य और उत्कृष्ट दोनों काल अंतर्मूर्त, क्योंकि उपशम सम्यक तो ही अंतर्मूर्त वाला है, इसलिए उसका जघन्य और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में सभी प्रकृतियों का काल उपशम सम्य दृष्टियों के समान कहना चाहिए, यानी अंतर्मूर्त तक। गुणस्थान की बात की उन्होंने, सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता की बात नहीं, सभी प्रकृतियों की सत्ता उसमें। सासाधन में 28 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 अवधि है, क्योंकि सासाधन में 28 की 28 प्रकृतियां होती है एक बार, और सासाधन गुणस्थान का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल 6 अवधि है, इस तरह से घटित होता है। विशेषण, जिस सम्यक्त्व का जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल है, उस सम्यक्त्व में संभव सभी प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल उतना जानना चाहिए। उस सम्यक्त्व में संभव है, जैसे क्षायिक सम्य दृष्टि है, उस सम्यक्त्व में संभव कितनी प्रकृतियां हैं, तो 21। वेदक सम्यक्त्व में कितने संभव हो सकते हैं, उपशम में कितने होते हैं, तो 28 हो सके, तो उसका काल अपना अपना बताए। केवल वेदक सम्यक्त्व की अपेक्षा प्रकृतियों के उत्कृष्ट काल में कुछ विशेषता है, यद्यपि वेदक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल पूरा 66 सागर बताया है, पर इसमें कृतकृत्य वेदक का काल भी सम्मिलित है, यानी कृतकृत्य वेदक सहित वो 66 सागर होता है। जो कोई क्षायिक नहीं जाने होने वाला है तो वो 66 सागर के पहले पहले अन्य विद्यात्व में भी जा सकता है, तीसरे गुणस्थान में भी जा सकता है, कृतकृत्य नहीं होने वाला। अतः वेदक सम्यक्त्व के काल में से कृतकृत्य वेदक के काल को कम कर देने पर वेदक सम्यक्त्व का जो शेष काल रहता है वह सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व की जब क्षपणा हो जाती है बाद का जो अंतर्मूर्त है उसको उसमें से कम कर देना। इसमें से सम्यक मिथ्यात्व के क्षपण काल को कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वह मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल है, क्योंकि मिथ्यात्व की क्षपणा होने के बाद वो सम्यक मिथ्यात्व का क्षपणा कृतकृत्य वेदक वो जो है उतना कम करेंगे 66 सागर में से, तो मिथ्यात्व के सत्व का काल हुआ। इसमें से मिथ्यात्व के क्षपण काल को कम कर देने पर जो काल शेष रहता है वह अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट काल है। उत्कृष्ट की बात है क्योंकि जब उसने जाके अंत में उसकी विषय योजना की, कोई ऐसा भी होगा ना बहुत पहले विषय योजना की थी और बाद में क्षपणा की, ऐसा जो नहीं लेना, क्योंकि हमको सत्व बढ़ाना है, अधिक से अधिक काल तक लेना है। सम्यक प्रकृति, अब वेदक सम्यक्त्व का जो उत्कृष्ट काल है तो कृतकृत्य वेदक तक 66 सागर है, तो तब तक उसके सम्यक प्रकृति है तो पूरे 66 सागर लेना। 12 कषाय भी उसके है ही है, क्योंकि उसमें कुछ सत्ता में कोई चेंज ही नहीं होता है, वो तो सत्ता बनी रहती है। 9 कषाय की भी सत्ता बनी है, उसका वेदक सम्यक्त्व की अपेक्षा जो पूरा 66 सागर काल बतलाया है वह सुगम है, क्योंकि कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि के भी इन प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है, और कृतकृत्य वेदक के काल सहित वेदक सम्यक्त्व का उत्कृष्ट काल पूरा 66 सागर है। संघी जीवों के सभी प्रकृतियों का काल पुरुष वेदी के कहे गए सभी प्रकृतियों के काल के समान है। इतनी विशेषता है कि संघी जीवों के मिथ्यात्व आदि 22 प्रकृतियों का जघन्य काल खुदा भव ग्रहण प्रमाण है। असंगी जीवों के सभी प्रकृतियों का काल एकेंद्रियों के कहे गए यानी वो अंतर्मूर्त न होकर खुदा भव ग्रहण प्रमाण दिया उन्होंने। देखो संगी जीवों में कब तक संगीपना रहेगा मिनिमम? संगी में भी लब्धि पर्याप्त होते कि नहीं? तो उसका खुदा भव ग्रहण होगा। और असंगी जीवों के सभी प्रकृतियों का काल एकेंद्रियों के कहे गए सभी प्रकृतियों के काल के समान है। यानी अनंतानुबंधी छोड़ा, सम्यक प्रकृति छोड़ी और सम्यक मिथ्यात्व छोड़ा। सम्यक मिथ्यात्व का एक समय घटित हो सकता है, सम्यक प्रकृति का भी। संगी में आने के पहले उसने उद्वेलना की और संगी में आकर एक समय तक सत्ता थी। अनंतानुबंधी में भी ऐसा अनंतानुबंधी की सत्ता उसने संगी है, उसने विसंयोजना के बाद संयोजना की और एक समय में मर गया, मरकर असंगी हुआ, ऐसा जीव ले सकता। तो इन 22 में तो अंतर्मूर्त ने खुदा भव ग्रहण तो होगा ही होगा, इनमें तो 22 के संगी लब्धि पर्याप्त है। हमने देखा ना पंचेंद्रिय में भी संगी असंगी पर्याप्त पर्याप्त सभी होते हैं। असंगी जीवों के सभी प्रकृतियों का काल एकेंद्रियों के कहे गए सभी प्रकृतियों के काल के समान है। आहारक जीवों के मिथ्यात्व 12 कषाय और 9 कषाय का काल कितना है? जघन्य काल 3 समय कम खुदा भव ग्रहण और उत्कृष्ट काल अंगुल का असंख्यात बाबा, वो आहारक बने रहने का, आहारक यानी रुजुगति से जन्म लेता रहे तब। तथा सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का काल ओग के समान है, यानी जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात्व भाग वो आहारक बना रहे तब तक। अनंतानुबंधी चतुष्क का काल मिथ्यात्व के समान है, इतनी विशेषता है कि जघन्य काल एक समय है। अनाहारक जीवों के सभी प्रकृतियों का काल कार्मण कायोगी के कहे गए सभी प्रकृतियों के काल के समान है। इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे हम, विशेषार्थ में दोबारा देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नऊ सदा देव।